वेदांत ग्रंथों में आता है अध्यारोपापवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारो और अपवाद से निष्प्रपंच का प्रपंचन किया जाता है। मानव पहले संसार का अध्यारोप करना पड़ता है कि संसार है, फिर उसका निराकरण करना हमारे मन में आया तो अध्यारोप करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में संसार एक माना हुआ है, संसार है नहीं। पर नहीं माना तो है जो रह जाए, है जो रह जाए। पहले इसको माने फिर इसको दूर करें, इसकी अपेक्षा है रूप से परमात्मा ही है। उस परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं, कोई नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं। ये वास्तविक बात है।
बिना माने संसार
अगर बिना माने जीता है तो हम संसार में बैठकर संसार की आंख से देखते हैं तब संसार ही। संसार में बैठ जाते हैं, संसार की आंख लेते हैं, संसार की आंख से देखते हैं, संसार दिखता
है। यानी महात्माओं को भी कपड़ा कपड़ा ही दिखेगा, मकान दिखेगा, सरकार की चीजें वैसी दिखेंगे, सच्चिता का दर्शन नहीं करेंगे, संसार को सत्य नहीं मानेंगे।
तो और क्या सत्य नहीं माने, और बात ही क्या, वो सत्य मान करके इसको उठावा, इसकी अपेक्षा इसको न माने ही ऐसा, ये बात कही मैंने। उसको सत्य माने कैसे मान सकते हैं, संसारी आदमी है, थोड़ा सा विचार करो। इसके परिवर्तन को नहीं देखता है क्या? केवल एक बात पर विचार करो, क्या संसार का परिवर्तन किसी से छिपा हुआ है क्या? को एक रूप नहीं रहता, ये बात कौन नहीं जानता? इस रूप से पहले नहीं था, इस रूप से फिर नहीं रहेगा, और अभी भी इस रूप से जिस रूप से देखते हो उस रूप से नहीं है। ये बात सच्ची होती है, ये बात, इस बात को मानना, सच्ची बात को स्वीकार करना। और क्या करना सिवाय परिवर्तन के और है क्या? बताओ
है।
बात अध्यारोप करके अपवादी करे, इसलिए अपेक्षा अपवादी करे सीधा। बात है जो रह जाएगी, वास्तव में जो है जो रह जाएगा, और है जो का ज्ञान हो जाए असली ज्ञान है वैसे और सही बोध हो जाए उसका नाम ज्ञान है। जिसमें ये परिवर्तन सी है, ये ज्ञान सबको है, कोई ऐसा नहीं कि जो ज्ञान न हो। तो ज्ञान का आदर करे न करे, इसको महत्व देना दे, वो तो उसकी मर्जी। परंतु ज्ञान नहीं है ये बात नहीं कह रहे थे न। बड़ी तेजी से बदल रहा है, सिवाय इस बदलने को क्या है? संसार संसार शब्द है, जगत शब्द है, ये संस्कृत शब्द है ना, ये अनवर्थक शब्द है। का तो समय पर जारी संसार की संसार निरंतर जो बदलता रहे उसका नाम संसार गति जगत मेरी कथा हो तो जगत नाम किसका हुआ जो कि बदलता हो उसका जगत शब्द का ही अर्थ यही है संसार शब्द का भी अर्थ यही है निरंतर बदलने वाले में हैपना कैसे देखा जाए बदलना किसी क्षण भी बंद नहीं होता कोई क्षण है जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में सर्ग में महाप्रलय में महाप्रलय
तो अपने आप हो रहा
है अपने आप हो रहा है अपने आप हो रहा है उसको कोई है जू का जू इसका अनुभव करना है ऐसा अपवाद हो रहा है अपवाद को इसको पक्की बात है बस ऐसी हुई है कि सही रहेंगे नहीं ये सही रूप से नहीं रहेंगे ये बात किसके लिए जैसी हुई है हरदम बदल रही है अपने ये देख लोग ये दौरे पर साहब कुछ कुछ नहीं था अरे तेरे मकान बन गए वृक्ष लगे तो ये हो गया था सही रहेगा तो ये तो बदल हरदम बदल रहा है पांडव ने राज्य किया उस समय राज्य था वो आवाज सही नहीं संत के युधिष्ठिर नाम से संबंध चलता था वो विक्रम के नाम से बनने लग गया और ईसा के नाम से चलता है सिवाय बदलने की और कोई तत्व नहीं अरे वो बदल करके अभाव में जा रहा है अगर सुना पता पुनस्ता अगर संसार है और फिर अगर नहीं चलेगा जैसे अभी इतने बैठे हैं यहाँ नहीं थे और ये नहीं रहे तो नहीं रहना ही हुआ मुख्य तो अभी जितनी बात करते हैं वो भी नहीं में ही जा रही है तो आकर के बैठा वो समय तो नहीं में चला गया अभी बात कर रहे वो नहीं में जा रही है वाक्य उच्चारण होता है वो नहीं में तो जा रहा है तो नहीं मुख्य रहा है पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं मैं जा रहा तो नहीं हुआ तो अपवाद ही हुआ तो एक मार्ग जो परमात्मा है गीता में योग का वर्णन है योग क्या है है उसके साथ अपना संबंध है इसका नाम है योग योग तीन धातु बनता है इंद्र योग योग समाज और योग संयम है जैसे गीता ने योग बताया है समत्म योग दुख संयोग वियोग योग संगीतम नित्य योग तो नित्य योग नाम संबंध मन है के साथ में तो जो है परिपूर्ण उसके साथ अपना संबंध है वही योग है ये नित्य योग है इसमें अयोग कभी अनित्य पर नहीं है संसार के साथ योग तो है नहीं और परमात्मा के साथ वियोग है नहीं उपयोग नहीं है उसका नाम योग है गीता योग नित्य योग का अनुभव जो नित्य निरंतर योग है के साथ में उसका अनुभव करना ना योग है दुख संयोग भी योगम उसमें दुख का संयोग नहीं समत्वम योग होते हैं ना समता है तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम माना ये राम माना साम्य स्थितम कई यही वो सर्ग जीता। तो साम्य है निर्दोष में स्वाम ब्रह्म निर्दोष और सम है और निर्दोष और सम पड़े को स्वीकार कर नारायण 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 परमात्मा है
राम माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 27 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन श्री मुरली मनोहर धोरा बीना सर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा हुआ। राम
हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम
नारायण 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 नारायण।
अब बोलो
महाराज जी। हाँ आपसे कड़ी में एक बात आई कि सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है, तो ऐसा लाभ का स्वरूप क्या है?
स्वरूप नहीं है वो, लाभ है वो।
कैसा लाभ है?
स्वरूप है, उससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं सकता। यंग लुभवा चा परम लाभम मन्यते ना देवी तथा संस्थित दुख है न गुणा विचार लेते। ये श्लोक एक गीता में नाम श्लोक है। तो तुम जो पूछते हो इस विषय में स्वरूप श्लोक है। यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगम ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ये मानने में नहीं आती बात, ये कभी मानने में नहीं आती। और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। लाभ तो बड़े से बड़ा होता है ऐसा होता है, हानि जिसमें किंचित मात्र कहीं भी नहीं होती है ऐसी बड़ी ऐसे लाभ है। अगर वो मेरे को मिल सकता है ये बात सबसे पहले होनी चाहिए, तभी वो चलेगा तुम्हारे को। बात ही सच्ची है, ऐसा बड़ा लाभ है मनुष्य मात्र को मिल सकता है। हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई पारसी हो कोई क्या हो कैसे ही क्या हो किसी संप्रदाय का किसी देश का किसी देश का कोई क्या हो उसको ये लाभ बड़े से बड़ा लाभ मिल सकता है। विश्वास वही कह रहे सुनने से ही होता है, कैसे हो कैसे हो विश्वास करने से होता है। ऐसा करने वाले है ना, कहने वालों पर विश्वास हो के भी बोलते नहीं है ठीक बोलते हैं, ऐसा होने से होता है। कोई पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक में देखा जो पूछता है कि सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा लाभ होता है और वो मिल सकता है, ऐसी बात होने से इस मार्ग में ठीक चलेगा। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, ये बात है सब। इसमें आप विचार करो एक लाभ है ऐसा जिसने कहा तो मैंने एक श्लोक बोल दिया, छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, उसमें यही बात आई है कि यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ है ये मानने भी नहीं आती बात, कोई कितनी कह दे तो भी आती नहीं। जिससे बढ़कर कोई लाभ होता है आ गई लाभ, जिससे बाहर बढ़कर लाभ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं, ऐसा लाभ हो जाता है जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न, शरीर के टुकड़े किए जाए छोटे छोटे तो भी वो विचलित नहीं होता, उस लाभ से इधर उधर नहीं होता। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, वहाँ स्पर्श नहीं, ऐसा लाभ मनुष्य मात्र को मिल सकता है। तो मनुष्य के जब ये जाए कि ये मेरे को मिल सकता है, तभी ना उसमें लट करके लगेगा ठीक तरह से। तो सबसे पहले इस बात की होने की आवश्यकता है। अब ये कहते हैं ऐसा विश्वास कैसे हो, तो ये तो ऐसे हो कि एक एक से बढ़कर के लाभ होता है, ये वे संसार में देखने में आती थी। हजार मिले, 10,000 मिले, 1,00,000 मिले, 1,00,000,000 मिले, एक से ज्यादा लाभ होता है कि नहीं?
तारतम्य है इससे, ये
तो तारतम्य तो आखिरी है, दो गए कहीं न कहीं, सीधी बात है, इससे बढ़कर कोई नहीं। ये तो हरेक को मालूम होती है, एक एक का बाप होता है आखिरी बाप कोई होगा, एक एक से विद्वान होते तो आखिरी विद्वान कोई होगा, एक एक से बलवान होते तो आखिरी बलवान कोई होगा, एक से बड़ा होता है सबसे बड़ा कोई होगा, ये तो सीधी बात है। अरे वो लाभ मेरे को मिल सकता है, मनुष्य हताश होता है, यही गलती होती है, निराश होता है, ये गलती है। मनुष्य ही मिलने पर पारमार्थिक आशा से निराश नहीं होना चाहिए। लौकिक आशा तो पूर्ति किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, और पारमार्थिक निराश कोई रह सकता ही नहीं, ये बात है। इसमें शंका हो पूछो, कोई तर्क उठती हो तो बोलो। है ऐसा सर्वोपरि पद है जरूर, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, एक एक से बढ़कर है, तो सबसे बढ़कर वही हो गई, हद हो गए नहीं कहीं कहीं तो। ऐसा लाभ है और मेरे को मिल सकता है, और अपने उद्योग किया है, परिश्रम किया है, तो उसमें अपने लाभ लिया है, तो ये बात भी है कि हमारे को मिल सकता है। जिस किसी ने जिस किसी विषय में अगर अभ्यास किया है, लगन से लिया है, तो उसको कुछ कुछ मिला है, ये बात भी प्रत्यक्ष है, ये बात है। सर बोलो, मैं शंका तो बोलो,
शंका ये है कि अब जैसे वो जो लाभ है, उस लाभ के क्या है कि मतलब हम उसका स्वरूप है ना, कि वो लाभ कैसा है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
कैसा लाभ नहीं है, लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है बताओ, फिर कैसा बताएंगे। लाभ किसको कहते हैं बोलो, तुम बताओ फिर कैसा बताओ। हाँ तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है बताओ पहले, कैसा तो पीछे आएगा ना, बस वही विशेष प्राप्ति से ना।
भागवत को क्या उपलब्धि मात्र, वो उपलब्धि मात्र है,
सनित्य उपलब्धि स्वरूप वो हम आत्मा, सनित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, नित्य उपलब्ध है, सबको नित्य ही उपलब्ध है। अब कैसे है वो कैसे बताएंगे,
जो गुड़ खाया हुआ है ना वही गुड़ का स्वाद बता सकता है,
गुड़ का बात कैसे बता नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं गुड़ खाओ बता दे, गुड़ कैसे खाए कोई बता सकता, बता ही नहीं सकता। बोलो बता दो, आप बताओ, मीठा होता है कहता है, मीठा होता है कैसा होता है, मीठा होता है कैसे बता देगा, कैसे बता देगा, पता नहीं सामर्थ्य नहीं है, कैसे बता देगा। वो तो खाने से ही जानेगा, बता नहीं सकता, दूसरे को समझा नहीं सकता, दूसरा विश्वास ही करेगा दूसरा काम नहीं कर रहा, बता नहीं कैसे बता देगा, बताओ तुम बताओ कैसा होता है मीठा गुरु, मामूली इंद्रिय का विषय है, उसको भी कोई बता नहीं सकता, सरोवर तत्व है वो कैसा है, ऐसा ही कह सकता है कि सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, उसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा है, ऐसी महिमा कर सकता है। बता कर देगा, छोटे से छोटा सुख वो ही बता नहीं सकता, उसे विश्वास ही करेगा, बताओ कैसे। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगे का गुड़ है भगवान। गूंगा गुड़ क्या होता है? मैंने कही थी एक बात कि पारमार्थिक बात है, इसका क्या पता। मैंने दृष्टांत दिया था कि अंग्रेजी भाषा कोई होती है, लिपि भी होती है, भाषा भी होती है। हम कैसे माने उस बात को कि जिसने अभ्यास किया है उसमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता आई है। तार आया कहीं से, उसने कह दिया समाचार, बात सच्ची निकले। अभ्यास किया है वो बता देगा, अभ्यास नहीं किया नहीं बताएगा। अभ्यास करने वाले में अभ्यास न करने वाले की अपेक्षा विलक्षणता आई है तो लिपि भी है, भाषा भी है, ये मानना पड़ेगा। और करेंगे क्या बताओ? ऐसे पारमार्थिक मार्ग में जो सच्चे हृदय से लगे हैं और उसमें कुछ विलक्षणता देखने में आती है, इससे सिद्ध होता है कि है कोई। इसके सिवाय हमें तो कुछ मालूम नहीं होता।
बड़ा अच्छा
दृष्टांत
है।
हाँ।
अंग्रेजी
में उतार
है और हम नहीं जानते।
नहीं जानते, लकीर हमारे को दिखती है, आपको दिखे उसे लकीर हमें कम थोड़ी दिखती है। हम नकल कर क्या लिखा बता दें, क्यों नहीं बता सकते? बस लिपि का अभ्यास नहीं किया, भाषा का अभ्यास नहीं किया, जाना नहीं हमने। अरे जिसने अभ्यास किया है वो बता देता है, ठीक होता है। ऐसे पारमार्थिक मार्ग में सच्चे हृदय से लगे हैं उनमें हमारी अपेक्षा कई बातें विलक्षण दिखती है। तो मूल में कोई तत्व विलक्षण नहीं होता तो उसमें कैसे आया? बस्ती में कॉलेज में गया था तो उसने किसी ने पूछा कि भगवान का प्रत्यक्ष बात बताओ आप, भगवान की कोई प्रत्यक्ष बात बताओ, ऐसी कैसे माने? तो मैंने उस दिन कहा था ये प्रत्यक्ष बात। अब बोले मैं कौन मना कर सकता है? अंग्रेजी की प्रत्यक्ष बात बताओ, अंग्रेजी भाषा होती है नहीं की होती है, प्रत्यक्ष बताओ, कैसे बताओगे?
पढ़े लिखे और बिना पढ़े का आप उसका
भेद ही बता सकते हैं। ऐसे पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों में जो विलक्षणता आती है, इससे सिद्ध होता है कि विलक्षण कोई तत्व है, नहीं तो विलक्षण कैसे आएगी? मेरे को प्रश्न पूछते हैं ना, वो पढ़ाते हैं मेरे को, मेरे को ज्ञान होता है। पूछो आप, मैंने लाभ की परंपरा बताई, माँ बाप की परंपरा बताई, विद्या की परंपरा बताई, योग्यता की परंपरा बताई, बल की बताई, बुद्धि की बताई, तो ये परंपरा कहीं आखिरी में ठहरेगी कि नहीं, ये पता नहीं। मेरा ने कहा है सब पूर्व स्वामी गुरु काले नानुच्छेदात, वो सबका गुरु है, पूर्व स्वामी गुरु, सब गुरु का गुरु है। तस्वीराज का प्रणव पद्यपर्द भावना लिखा, उससे बढ़कर कोई नहीं हुआ, नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। उसकी प्राप्ति में विश्वास नहीं है, उसको प्राप्त हो सकता है, हम काम हो सकते हैं। और विश्वास करना कोई चाहे तो आप स्वयं समझ लो कि सत्संग करने वाले न करने वाले उनमें फर्क है कि नहीं। अब वो फर्क नहीं दिखता लोगों को, कोई फायदा नहीं है, ये सत्संग करते उनमें नहीं करते उनमें कोई फर्क नहीं है। अब उन्होंने कैसे समझावे, अभी चातुर्मास में एक ही पत्र का संपादक था, वो आया तो वो कहा कि मैंने तुलसीगढ़ी को मैंने कहा कि तुम्हारे इतने सुनते हैं कोई फायदा नहीं किसी को नहीं, ऐसे ही आप गई सुनते हैं किसी को कोई फायदा नहीं, सुन क्या फायदा हुआ, हमारे जैसे वो है वो जैसे हम है हमारे को कोई फायदा नहीं। तो मैंने कहा हमारे सत्संग करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हो ही नहीं सकता, कोई फर्क पड़ेगा ही जरूर, तुमको तो कोई फायदा नहीं, हमको फायदे से वंचित रह सकता ही नहीं, हमारे सत्संग सुने तो अरे फायदे से वंचित रहेगा, हो नहीं सकता, अब तुम्हारी आंख ही नहीं हो देखने की, क्या बता रहे, उसमें कोई फायदा नहीं, मैं कोई फायदे से वंचित रह सकता ही नहीं, बोलो दोनों को मिला वो बात कैसे मिलेगी, उनकी इज्जत हुई है मेरे भी इज्जत हुई है, अब न्याय कौन करे, उनकी इज्जत कोई फायदा नहीं, हम कहते फायदे से वंचित रह सकते ही नहीं, हमारे बड़ी जोर से इज्जत हुई है, शेर जी ने कहा था कि हम बनिए हैं घाटे के काम में हम नहीं जाते, सत्संग हम करते हैं यहाँ बड़ी जी बैठे थे बात करेंगे वहां होकर मुसलमान निकले ऐसे, वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता, उसके भी मन में आ गए हिंदू लोग है कोई अपने धर्म की बात करते हैं आपस में करते हैं, दो चार फुरना उसको ऐसी हो गई, उसने जीता साधन करने वाले भी ऐसा ही देखते हैं कोई लाभ नहीं दीता, इतना दिन से हम करते हैं हमारा कोई लाभ नहीं दीता, ऐसा कर दी, अरे वास्तव में ठीक ही है जो लाभ होना चाहिए जैसा नहीं हुआ है, परंतु कुछ भी लाभ न हो तो आप लगे नहीं रह सकते, उसमें रुचि नहीं रह सकती, अब इसमें बोलो आप तर्क करो,
ये कमी है
तो मैं कहता हूँ भाई सत्संग करने से फर्क पड़ता है कि नहीं
है।
तो इससे बढ़कर और क्या प्रेम साबित हुए,
जिसकी सच्चाई नहीं है उसको स्वीकार करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
नहीं जैसे अभी आपने जो युक्ति बताई इससे बहुत संतोष हुआ,
यदि मान लो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है तो अंग्रेजी पढ़े हुए और जिन्हें पढ़े हुए ये फर्क है तो इसका मतलब मानने पड़ेगा गांधी जी, कोई चीज है संतों ने जो विलक्षण आई है तो माननी पड़ेगा, कोई तत्व है इससे बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत गलत है, काफी तत्व है ये चीज है, अपने जीवन में फर्क पड़ता है, कौन कोई चीज है ना, पढ़ाई भी कोई चीज है, संस्कृति भी कोई चीज है, भाषा भी कोई चीज है, नहीं तो उसमें फर्क कैसे पड़ता है, प्रत्यक्ष बात है, अब उसको आपको माने आप माने न माने आपकी मर्जी है, नारायण 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 नारायण
राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 28 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हुआ। राम
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि राम
नारायण 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 नारायण। अब बात चला हो गई, बढ़िया बात है, पूछो
सत्संग
सार तो बहुत बढ़िया है और हमारा अनुभव तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, परंतु सार एक चीज है असली, मैंने जैसे पुस्तकों में पढ़ा है संतों से सुना है मेरे मेरे विचार में आया है, वैसे करने से जो होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रकृति से अतीत तत्व है वो क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। पदार्थ और क्रिया सब प्रकृति है, तो प्रकृति के त्याग के द्वारा पुरुष में स्थिति होती है, प्रकृति के द्वारा नहीं होती है। ये बात है सार। अब इसमें जितना आप विचार करो मेरा उतना बहुत लाभ होगा। मैं कर्ण निरपेक्ष बात कहता हूँ, जिसमें लोग हिचकते हैं और वो समझ नहीं आती है। कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कारक मात्र से निरपेक्ष है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि कोई भी कार्य, कोई भी कारक वहां नहीं पहुंचता। कारक राम उसी का है जो करने वाला हो। करने क्या कि क्रिया, अरे क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, व्यक्तियों का संयोग और वियोग होता है, तो इनके द्वारा उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। हमें मंगो भी हो तो वो इस बात से है कि गुणों को निवर्तन से कर दिया अथवा दुनिया का हित कर दिया, तो इससे जड़ता का त्याग हो जाता है। तो कहते हाथ हाथ हो गया ही, त्याग आ गया। आप जबरदस्ती कंठ मत पकड़ो, हमारा उसमें निषेध नहीं है, खंडन नहीं है। तत्व की बात पूछ दो, तत्व की बात मैं कहता हूँ, तत्व की बात है, वो तत्व से नहीं मिलता। अंतर्गण शुद्ध होने से होगा, तो अंतर्गण शुद्ध होने से, कर्म शुद्ध होने से कार्य शुद्ध होगा, कर्ता शुद्ध कैसे होगा? इस पर आप विचार करो, इस बात का क्यों, इस बात पर विचार करो। जड़ता से पूर्व पक्ष दूर होता है, तो जड़ता दूर करने के लिए आप काम लेंगे कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, परंतु तत्व की प्राप्ति में कारण मत मानो।
प्राप्ति में
संबंध विच्छेद की आवश्यकता है, न कि सहायता की। सहायता मानोगे तो अंतर्गण विच्छेद नहीं होगा। इन कारकों के साथ संबंध विच्छेद कैसे होगा? जिसको हम सहायता मान लेंगे, सहायक मानेंगे, उनका हम त्याग कैसे करेंगे? फिर त्याग करेंगे तो वो सहायक कैसे होगा हमारा?
आवश्यकता
होगी, कहता हूँ पढ़ो आप मेरा, मैं इसका निषेध नहीं करता हूँ, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इतना जप करने से, इतना ध्यान करने से, इतना तप करने से, इतना करने से हो जाएगा। ये जो आपकी भावना नहीं, ये भावना यहाँ गलती है, इनसे नहीं होती उसकी प्राप्ति। वो तो है प्राप्ति, स्वतः आप अभी चुप हो जाओ तो आपकी स्थिति उसी में ही है, सुख शुद्ध स्वाभाविक। ये 13वां अध्याय 31वां श्लोक है, ये बहुत विलक्षण है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपित कौन के न करोति न प्रलिप्यते, शरीर में स्थित रहता हो भी न करता होता है न लिप्त होता है। तो लिप्तता दूर करने के लिए कर्मयोग है, कर्तव्य दूर करने के लिए ज्ञान योग है। ये शरीर स्थोपित कौन के न करोति न लिप्यते, स्वतः सिद्ध न करते तो है न लिप्तता है, है नहीं है। इस वास्ते कहा कि जैसे न अंक को भाव बुद्धि, जैसे न लिप्यते, जिसकी अंक भाव नहीं बुद्धि नहीं होती। अथवा किसी मान लो का न अंत न संपूर्ण दुनिया मात्र को मार दे तो न मार पाए न बन पाए। ये शरीर स्थोप कौन दे न करो के न लिप्यते, इसमें है नहीं चीज। तब तो ये मुक्त होने के बाद बंधन में नहीं होता, क्योंकि इसमें है नहीं पहले से, केवल आपने मान रखा है, माना नहीं माना है मिट गया। इस बात को आप समझने की कोशिश करो।
आप दोनों तरफ एक तरफ अपना हल्ला कर रखा है, केवल
मानो अनुभव तो अनुभव तो है नहीं, करोगे हम ब्रह्मास्मि कहे तो हलो नहीं तो क्या है, उसे बड़ी भारी हानि होती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान में बंद होती
है।
तो शुद्ध तो है, शुद्ध मैं मान लू वो अनुभव न हो तो उसके मानने पर क्या होगा, अनुभव में पाठा होगा हमारे मानने पर, जब मानो तो ये ख्याल रखो ये कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तयोग सब दुर्गुण दुराचारों को दूर करने के लिए है, तो कोई दुर्गुण वृत्ति आप में ना आवे तो प्रयोग प्राप्त हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। ठीक तरह से मैं कहूँ अभी अभी अपने आप की स्थिति है, ऐसे तू फिर आप एक दो बार फंकार करके और चुप करके और बाहर आसपास को छोड़कर और चुप हो जाओ, फिर श्वास धीरे धीरे आवे उसमें कोई दबल मत हो, लोगों ने जरूरत नहीं है, ये तो सुबह सिद्ध है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं हूँ तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है तो मैं नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ये हल्ला है, वास्तव में तत्व है वो मैं तू यह वह अलग का नहीं है, न मैं लगता है न तू लगता है न वह लगता है न यह लगता है, है करके सुबह आपकी वही स्थिति है, तुम जिसको कहते हो स्थिति सुख है, अब जो शंका उठती हो आपके बाधा लगती हो वो भी आप पूछो, बहुत खुले लग से आपके शंका जो है वो पूछोगे उसे बहुत खुले लग, है तो सुंदर है सदा, नहीं तो सुंदर ना है, नहीं तो प्रकट के लिए है सो दिखे ना है, स्वरूप स्थिति मात्र प्राणी के कसाई से कसाई की भी स्वरूप स्थिति हुई है, पापी से पापी की सृष्टि है, गुरु से गुरु दुराचारी दुराचारी की स्थिति रही है, पशु पक्षी सिंह साहब की स्थिति रही है, स्वरूप में ही वो जड़ शरीर के साथ मैं मेरापन करके ही बंधन में आया, तो मैं मेरापन ये नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही तो पहले मान लो भाई वो अल्लाह करे जिक्र अल्लाह तरी कहता हूँ मैं, समझ नहीं आया परंतु तो वास्तविक तत्व क्या है कि इस जड़ के साथ मेहता की एक तरह हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव है, रवि रजनी इकट्ठा सूर्य और रात दोनों एक साथ रहते नहीं, यद्यपि मृषा जड़ चेतन ही गाठी पर एक लेकिन मृषा सूचित करने की, तो सूचित करने में क्या है कि ना तो है बुद्धि की तीक्ष्णता ना है उस चीज की लगन का प्राप्ति की लगन ना है उस पर दृढ़ विश्वास, मैं कहूँ जात पर विश्वास ही पूरा नहीं है, उसकी प्राप्ति मेरे को ऐसी दृढ़ लगन भी नहीं है बताना भी नहीं है, फिर क्या होगा फिर तमाशा होगा, हमें तो उसकी प्राप्ति करनी है, चाहे सुख हो जाए अभी बैठे हैं ना, जो ही बैठे हैं हमारा घर है, बाहर है, रुपया पैसा है, कुटुंब है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं आना है, रहना है, देना है। हम तो संसार के लिए मर गए, संसार मर गए, मर गया। अभी अभी प्राप्ति आपका कैसा अंतकरण है, कितना शुद्ध है, अशुद्ध है, कैसे आते हैं, कोई शुद्ध अशुद्ध जरूर तो ये होगी, उससे हम काम लें तब वो चीज शुद्ध चाहिए। जैसे उसका त्याग करना है तो शुद्ध सूफी है, मतलब जो आप संकल्प क्यों नहीं करते, जो आप संकल्प पैदा हो वो जो विश्वास हो जाएगी, वो विश्वास मार्ग है, मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग, विश्वास मार्ग में सब ठीक है, जितना कहा जाए उतना ठीक है, उसे कहा जाए उतने भी ज्यादा फायदा है उसे, हो जाएगा पर हो जाएगा भविष्य है। अरे हम कहते हैं भविष्य नहीं है, किन दिन हमारा भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं। दो दो चार होते हैं, उन्हें पांच और तीन नहीं होते।
समझ में आई हूँ तो ऐसी समझ में आई है
हाँ,
कि संसार के साथ संबंध जो है वो खुद ने किया है
बस,
और वो मन बुद्धि इंद्रियों से मिटेगा
नहीं, क्यों नहीं मिटेगा, तो संबंध इनको तो संबंध रखोगे ना, मन से इंद्रिया से बुद्धि से संबंध रखोगे तो मिटेगा कैसे।
के द्वारा ही उसको अलग करना पड़ेगा,
इस बात एकदम एक बात अब इसमें और बात आती है तो ये इनके साथ अपना है नहीं, साथ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है।
अब प्रयत्न हम करते हैं कि मन को ठीक करके
हाँ
तोड़ ले रहे
हैं, हाँ यूं
कर ले
रहे
हैं, तोड़ ले रहे हैं, वो टूटेगा खुद के अस्वीकार करने से
बस। अब बात है व्यक्ति यही है कि जो संयोग जन्य सुख की इच्छा है, आशा है, ये बात है। और उस बाधा को मिटाने के लिए कर्मयोग सबसे बढ़िया चीज है। दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरे कैसे हो, ये लगन लग जाए तो सुनिश्चित। एक बात बताऊं, जैसे राम निवास जी ने खाया हुआ तो उद्योग किया, अब भी जनता के वास्ते उद्योग करते हैं, स्वाभाविक भोगेच्छा कम हुई है ऐसा मेरा अनुमान है। स्वाभाविक कोई उद्योग करना विचार करना संग्रह की इच्छा, भोगों की इच्छा, और ज्यादा कह दूंगा पूरा मत मानना, ये चालाकी की चतुराई की इच्छा है, इसे अरुचि हुई है। अब ये बात है सच्ची है झूठी है बताओ, स्वाभाविक सत्य है, कोई विचार करेंगे छोड़ने की त्याग करने की कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा स्वाभाविक। ऊंचा उठेगा ही सत्य, नहीं तो ते प्राप्त मंदिर मामे वो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति हो गई वे मेरे को प्राप्त होते हैं, ज्ञान मार्ग में बात लिखी है तुमने। दूसरे के हित है ना, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जिन दुर्लभ कुछ नहीं, कोई ज्ञान है ना, ध्यान है ना, कोई जप है ना, कीर्तन है ना, कोई साधन है ना, कोई उद्देश्य भी नहीं, मुमुक्षा का भी मुमुक्ष व्यक्ति हो गया है, ऐसा मुक्ति का उद्देश्य भी नहीं है। सती स्वाभाविक ही आग मुक्ति हो गई बिना चाहे बिना। जड़ता का प्रवाह जड़ता की तरफ ही होना चाहिए, अब अपेक्षित नहीं होकर। बड़ी भारी काम की चीज है दूसरों का हित करने की जो भावना है, किसी का अहित न हो, कहीं चेतना से भी अहित न हो और उसके हित करने में मेरा नाम हो, मेरी बात ये भी किंचित मात्र भी नहीं हो। देखो एक तमाशा हो जाए, करते करते
महीने किया फिर ऐसा
है कि बेकार उठते हैं, बेकार उधर होते, बेकार नष्ट होते हैं, बेकार होते हैं ये नष्ट होते हैं। अपना उद्देश्य जब बेकारों से सुख लेने का नहीं है तो विकार होकर नष्ट हो जाए। विकार सब टिके हुए हैं सुखाशक्ति पर, उसमें सावधान रहो। अब समझ में आया, अब यह है इनकी ये बात हो जाए कि सब मारे ठीक कैसे हो जाए, सबकी चिंता को सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो जाए, यही चिंतन हो, यही विचार हो, यही लगे रहो। बाधा आवे दिल ना आवे, दोष आरोप आवे आप पर, कितने रुपये खा गया, इतना इतना काम करा दिया, यहाँ गड़बड़ी कर दी, खाई खा रहा हूँ। अपने में दोष निकाल लो, कहीं भी सुनने में अगर दीजिए तो तत्काल निकाल लो, सुनो मत, कितने अपमान हो जाओ, कितनी निंदा हो जाओ, कितने तिरस्कार। मेरा तो ऐसा अनुमान है कि इससे आपको फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ये वेदांत चर्चा से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह का अनुभव नहीं पड़ेगा, एक अभिमान और पैदा होगा। अब चिंता करो, राम निवास जी के हमारे दर्शन से ये मत भेद रहा है, मैंने भी काट करता जरूर अच्छी नहीं रहती, अगर शांत करता हूँ तो मैं एक दृष्टि से करता हूँ उन चीजों को, खराब नहीं सोचता हूँ। उसका जो ज्ञान मान विमत भव है हरि भगत न आदरी ते पाए सुर भगत पद प्रगति, ज्ञान मान ये मेरे विलास विमुक्त मानना संयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्ध या आरुहि कृष्ण न परम पदम तथा पतम तथा अनादि मुक्त मान में है ना, उस पंडित का मन है बिल्कुल नहीं है, सिद्धम दोष कभी मैं मानता ही नहीं, कदम तो लक मुक्त व्यक्ति नहीं कर रहा था, कभी सिद्धांत तो रही है
व्यक्तियों के प्रति।
हाँ उसी का खंडन है, व्यक्ति का दोष होगा ही, ऐसी तरह से उसमें व्यक्ति में दोष आगे जाए ये अनुमान होगा, वो प्रक्रिया इस तरह से है।
तो महाराज जी उसी प्रक्रिया में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है?
वो में ये होता है कि अपना कल्याण चाहते हैं ये तो एक भीतर रहती है, परंतु सुखा शक्ति का त्याग करना चाहते नहीं। इसमें क्या मतलब है, आत्मा है वो बुद्ध मुक्त स्वरूप है, और बंधन है ही नहीं, फिर ये त्याग रुग ये करना मेरे से क्यों दुख होना ही में। ये विदित की बैठी बात है, बात सच्ची ऐसी है ही, जो तुम शास्त्र को लिखने वाले वैसे ही है पंडित लोग, अनुभव थोड़े ही, और जो अनुभव है संतों के बारे में जो जोर के नहीं है ऐसा कहीं नहीं सकते। सब लिखते सभी लिखेंगे,
भक्ति के जो जोड़ दिया
तो भगवान भक्ति से शुभम भक्ति से भगवान की सहायता विशेष मिलती है। ज्ञान मार्ग में भी भगवान की सहायता मिलती है, परंतु भक्ति वाला वो निर्भर होता है भगवान भगवान पर, तो भगवान पर जिम्मेवारी विशेष आ जाती है। तो वो गहरा विचार करो,
ये विचार रखते हुए अगर भक्ति मार्ग का अनुसरण करते रहे तो
बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। भगवान पर भरोसा रखे और ये जनता हमारे काम के नहीं है, इनकी बल सेवा करो, उनकी सेवा कैसे बन जाए, दूसरों का हित कैसे हो जाए, किसी का भी किंचित मात्र भी हित हो जाए, कष्ट किसी को न हो, ये लग्न होनी चाहिए। जैसे योगी की धन में होती है केवल ये लगन, रामनिवास जी की स्वतः ऐसी वृत्ति है, अगर ये बढ़ाओ इसमें बहुत उन्नति कर सकते हैं। बाधा कहाँ कहाँ आज का तो पता नहीं है, है बड़ी अच्छी
मिथ्याभिमान की जो प्रवृत्ति है
हाँ।
वो पैदा होती है,
ये बात है, ये आप अगर खोद निकाल दो बहुत जल्दी आपकी स्थिति में बदल जाती है। अरे वो मिथ्याभिमान अभार साथ हो इससे ज्यादा मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, वो बहुत मिलेगा, पर वो मिलेगा इस आशा को लेकर मत करो, अगर वो त्याग करना है इसका हानि नहीं होगी। आप चाहते हो उस बात का भी लाभ ज्यादा होगा, कमी नहीं होगी, पर वो लेना नहीं है।
चाहता हूँ उस बात से लाभ
मिलेगा,
जो चाहता हूँ उससे मिलेगा, उससे लाभ भी नहीं
है। हाँ उसे लाभ नहीं है, नहीं चाहने पर मिलेगा उसे हानि नहीं है। अब इस बात पर आप विचार करो, ये ग्रंथ ही है
भक्ति मार्ग में सर्वजी, इससे संबंध
तो
अलग
नहीं है, करना ही पड़ेगा, भक्ति हो ज्ञान हो योग हो
कोई हो,
इनमें तोड़ना मुख्य है, उसमें भगवान से जोड़ना मुख्य है, जोड़ने पर टूट जाएगा, तोड़ने पर जुड़ जाएगा।
भक्ति मार्ग में तो कहा कुसुंडी जी कहते हैं कि तन के बिना भजन नहीं, तन तो रखा उन्होंने अभी 27 कल तक है, अभी तन कहते हैं
उत्तर
में
कि
बिना तन के भजन नहीं होता,
भजन नहीं होता, ये बात इतनी बच्चा बड़ी मुख्य नहीं है, ये एक अंश में है, भजन नहीं बढ़ रहा, ये एक अंश में है, शरीर से होने वाला भजन भजन नहीं है, भजन तो लगन है, तन्नगार इसमें प्रेम से भजन दूसरा भगवान बिना रहा न जाए, ये है वजह, सही हो जाए ना, जैसे मेरा मैंने घर ही बिना रहो न जाए, उसके बिना चैन बेचैनी हो जाती है, प्राण निकलने नहीं लग जाए, वो वजह है।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामकृष्ण व्यास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 29 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे की स्थिति प्रार्थना के बाद हुआ। राम
Hare Rama। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.